ज़करिया अध्याय सात। बाबुल में इसराइल के वंशज दो दिन उपवास के रखते थे। मंदिर का विनाश जो बाबुल की सेना द्वारा किया गया था, उसके विलाप में उपवास रखने का दिन। कुछ व्यक्ति ज़करिया के पास प्रश्न लेकर पहुंचे। ज़करिया अध्याय सात पद एक से लेकर तीन तक। फिर दारा राजा के चौथे वर्ष के किसलेव नाम नौवे महीने के चौथे दिन को यहोवा का वचन ज़करिया के पास पहुंचा। बेतेल वासियों ने शरेसेर और रेक मेलेक को इसलिए भेजा था कि यहोवा से विनती करें और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यत वक्ताओं से भी ये पूछे, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए जैसा कि कितने वर्षों से हम पांचवें महीने में करते आए हैं? बंदुआई के सत्तर वर्षों में पांचवें महीने में मंदिर के विनाश का ये उपवास रखा जाता था। ज़करिया अध्याय सात पद चार। तब सेनाओं के यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। ज़करिया इस प्रश्न को लेकर यहोवा के समक्ष उपस्थित हुआ और यहोवा ने उसे उत्तर दिया। ज़करिया अध्याय सात पद पांच से लेकर सात तक। सब साधारण लोगों से और याजकों से कह कि जब तुम इन सत्तर वर्षों के बीच पांचवे और सातवें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे? और जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने ही लिए नहीं खाते और क्या अपने ही लिए नहीं पीते हो? क्या ये वही वचन नहीं है जो यहोवा अगले भविष्यत वक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता रहा जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत चैन से बैठा हुआ था और दक्षिण देश और नीचे का देश भी बसा हुआ था? दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा है कि उसने तो इन उपवासों की स्थापना नहीं की थी। वे तो उस दंड के लिए विलाप करते और उपवास करते थे जो परमेश्वर ने उनके पितरों की अवज्ञा के कारण उनको दिया था। अब उन्होंने यदि इन अवसरों को अवकाश और उपवास का रूप प्रदान कर दिया है तो ये तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। रूढ़िवादी यहूदियों में पांचवें और सातवें माह के ये उपवास आज भी रखे जाते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में उनका मूल्य नहीं है। उचित होता कि उनके पूर्वज परमेश्वर की चेतावनी पर ध्यान देते। यशाया 58 अध्याय में लिखा है, यशाया 58 पद एक से दो। गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरे गति बूझने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली? हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया? सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊं की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा का प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वो ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दोहाई देगा और वो कहेगा मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, मनुष्य अपनी ओर से ही धार्मिक अनुष्ठान स्थापित कर लेता है जैसे उपवास। उन्होंने पूछा क्या हम करें? परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया, ना तो मैंने उन्हें उपवास करने के लिए कहा था और ना ही वे सच्चे उपवासी हैं। उचित तो ये होगा कि वे एक दिन निर्धारित कर लें और बैठकर विचार करें कि जो कुछ हुआ उनकी अवज्ञा के कारण हुआ। मंदिर के विनाश का विलाप मत करो, यदि विलाप करना है तो अपने पुरखों के उस मन का करो जिसे उन्होंने नहीं फिराया और मंदिर का नाश हुआ है। अतः ये अवकाश और अनुष्ठान मेरे दिए हुए नहीं है। हे परमेश्वर, क्या आज हम बड़ा दिन, गुड फ्राइडे, लेंट सीजन, दुख भोग सप्ताह आदि माने? मैंने तो नहीं कहा, ये तो तुम लोगों के बनाए हुए हैं। उचित तो ये होगा कि उन वचनों पर ध्यान दो जो यहोवा पुकार पुकार कर कहता था जब यरूशलेम और उसके नगर बसे हुए थे तथा समृद्ध थे। जकरया अध्याय 7 पद 8 और 9। फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यूं कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना। यहोवा यही चाहता है, वो उपवास और पर्व की चिंता नहीं करता है। जकरिया अध्याय 7 पद 10। ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेशी पर और ना दीन जन पर, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। परमेश्वर को इन बातों की चिंता रहती है, वो इन कामों से ही प्रसन्न होता है। ये करो ना कि उपवास। जकरिया अध्याय 7 पद 11। परमेश्वर ने कहा, परंतु उन्होंने चित लगाना ना चाहा और हट किया और अपने कानों को मूंद लिया ताकि सुन ना सके। भविष्यत वक्ताओं ने उपरोक्त बातें उन्हें समझाई, परंतु उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। जकरिया अध्याय 7 पद 12 और 13। वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए वज्र सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा अगले भविष्यद वक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का और सेनाओं के यहोवा का ये वचन हुआ कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। कैसा भयानक सत्य है! परमेश्वर कहता है, मैंने पुकार कर कहा, खराई से न्याय चुकाना, एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, विधवा, अनाथ, परदेसी और दीन जन पर अंधेर ना करना, निवस्त्र को वस्त्र पहनाना, भूखे को भोजन देना, परंतु तुमने नहीं सुना, अब तुम्हारे पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी हो, हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, उस पर कान लगाएं, जिससे कि हमारी आवश्यकताओं और परेशानियों के समय जब हम परमेश्वर को पुकारे तब वो हमारी पुकार सुने। जकरिया अध्याय 7:14। वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा और उनका देश उनके पीछे ऐसे उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना ना होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ कर दिया।